जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada.
Jai Vishnupad Paramhansvari Rajkacharya Stotarsha Shri Shri Madhisvam Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupad Paramhansvari Rajkacharya Stotarsha Shri Shri Madhisvam Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrind Ki Jai Namacharya Srila Dashtakur Ki Jai Samved Bhakta Vrind Ki Jai Nitai Gaur Bhrimanandi All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauram. Hare Krishna. SMS sent to 114 with Prabhu. So 114 and 115 are. फोन पे 113 बताया था, एसएमएस में 114 था, बोर्ड पे 115 है. एंड दिस रिवीजन हो जाएगा. कौन सा क्या आदेश है भाई सबका? 113 का परपोर्ट नहीं है ना. तो ये तो 115 है. तो सब रिपीट करते हैं श्लोक. फोर्टीन करना, फिफ्टीन करना, फिफ्टीन कर सकते हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. जैसे जगन्नाथ जी की इच्छा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायेष्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. हरे कृष्ण. तो आज एकादशी के अवसर पर भगवद गीता का पाठ करना वैसे बड़ा शुभ है. वैसे तो हर दिन ही शुभ है, एकादशी के अवसर पर खास कर. तो आज श्लोक संख्या शुरू करेंगे 13 से. 13 का तात्पर्य नहीं है, फिर 14 पे जाएंगे और हो सकता है 15 भी, क्योंकि आदेश है 15वां भी कवर करने का. क्या 8 बजे खत्म करनी है, क्या आगे चल सकते हैं? 8 बजे तक ही है. तो श्लोक सब रिपीट भी करते हैं आप. तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान गोमुखा सह सैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमलो अभवत्. तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे. वे संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था. तो आप लोग सब लोग आते हैं हर संडे, हर सैटरडे, पिछले सैटरडे भी आए थे सब. सब आए. कौन पहली बार आया आज? पहली बार, फर्स्ट टाइम हर सर. तो पिछली बार जब सब आए थे तो कोई बता सकता है क्या क्या चल रहा है अभी तक? कुछ शेत युद्ध के बारे में बताया जा रहा है. और एनी अदर? ओके ओके. और ओके एनीबडी एल्स? और क्या सीखा? यस. ओके, पीछे माता जी से नोबडी, ओके, और पीछे वो तो मतलब प्रभुपाद ने प्रभुपाद ने लिखा ना हमें से शंख तो कृष्ण की विजय के लिए बचता है। यस माता, द क्वालिटीज ऑफ दुर्योधन, ओके। तो अभी प्रसंग ये चल रहा है कि भगवद गीता की शुरुआत होती है, धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों ने जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। तो महाभारत में जैसे बताया गया है कि संजय जो है पहले युद्ध क्षेत्र में थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे। युधिष्ठिर महाराज ने सब योद्धाओं को मना किया था कि इनको कोई नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि ये धृतराष्ट्र के रथी भी हैं, तो इन्होंने उनको न्यूज भी देनी है। तो 9 दिन तक संजय जो थे युद्ध में थे, 9वें दिन जो है भीष्म पितामह को अर्जुन जो है बाणों की सैया पे सुला देते हैं, और फिर 9वें दिन जो है संजय वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं कि अब जो है कौरवों के जीतने का सारे रास्ते खत्म हो गए, अब कौरव नहीं जीत सकते। तो 9वें दिन जो है वापस जाते हैं, और ये 9वें दिन के बाद जो है 9 दिन तक धृतराष्ट्र को कुछ नहीं पता कि युद्ध में क्या हो रहा है। 9वें दिन के बाद से धृतराष्ट्र को मैसेज मिलना शुरू होता है। इसलिए अगर पहला श्लोक देखें भगवद गीता का, तो धृतराष्ट्र ने ये नहीं पूछा कि मेरे पुत्र और पांडव पुत्र क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने क्या किया, पास्ट है। अगर लाइव देख रहा होता तो कहता ना क्या कर रहे हैं ये बताओ, उन्होंने पूछा कि उन्होंने किया क्या। फिर संजय जो है सारे पहले डिस्क्रिप्शन देते हैं, पहले भगवद गीता का ज्ञान देते हैं धृतराष्ट्र को, फिर युद्ध के बारे में बताएंगे, और फिर बताएंगे कि भीष्म पितामह भी गिर गए हैं, अब द्रोणाचार्य और फिर बाकी जो सेनापति बनते हैं कौरवों की सेना के। ओके, अब धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे पुत्रों और पांडव पुत्रों ने जो युद्ध के समय एकत्रित हुए हैं उन्होंने क्या किया। एक तरीके से देखा जाए क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, अरे युद्ध के लिए एकत्रित हुए तो और क्या करेंगे, कीर्तन थोड़ी करेंगे, युद्ध ही करेंगे ना तो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। पर धृतराष्ट्र के मन में अभी भी 9 दिन बाद भी खलबली मची है, क्यों, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं और धर्म का प्रभाव जो है मेरे बच्चों पर पड़ सकता है, और हो सकता है वो युद्ध ना करें, यह धर्म का प्रभाव पांडव पुत्रों पर ज्यादा पड़ सकता है, हो सकता है युद्ध ना करें कि दुर्योधन तुम सारा राज्यपाट ले लो, हमें नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। पर धृतराष्ट्र के मन में ये उत्सुकता थी जानने की उन्होंने किया क्या, इसलिए पहले शब्द दिया था धर्म क्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र है। तो उस जगह जाके उन दोनों ने क्या किया, ओके। फिर तो संजय जो है बताते हैं मेनली दो ही चीजें, दुर्योधन ने क्या किया और अर्जुन ने क्या किया, ये नहीं बताते कि दुर्योधन के साथ दुशासन भी था और भी 99 भाई और भी हैं, उन्होंने क्या किया कुछ नहीं बताया। तो इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बताया, और यहाँ अर्जुन के बारे में, ये नहीं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, भीम ने क्या, नकुल, सहदेव, उन्होंने क्या किया, नहीं बताया। पर साथ साथ क्योंकि अर्जुन ने क्या किया उसके साथ साथ आ जाता है कि कृष्ण ने क्या कहा। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे और कृष्ण ने उनका जवाब दिया, तो इसलिए कृष्ण के भी बात बीच में आती है। तो सबसे पहले जो है दुर्योधन के बारे में बताते हैं। दुर्योधन जो है खड़ा हुआ, उन्होंने पूरी सेनाओं का निरीक्षण किया, सब बता रहे कि हमारी सेना में कौन कौन है, पांडवों की सेना में कौन कौन है। हमारी सेना जो है भीष्म देव से कह रहे हैं कि आपके द्वारा रक्षित है। और पांडवों की सेना तो वैसे दुर्योधन भी बड़ा डिप्लोमेट था, और भीष्म पितामह के पास नहीं गया, गुरु द्रोणाचार्य के पास। बहुत ज्यादा इधर डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स चल रही है, और सिर्फ दुर्योधन के बारे में बताया इतनी डिप्लोमेसी खेल रहा है, पांडवों के साथ कुछ नहीं। दुर्योधन किसके पास है? द्रोणाचार्य के पास। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, भीष्म पितामह क्षत्रिय है। अगर भीष्म के पास जाता तो द्रोणाचार्य बुरा मान सकते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों का जो है वर्ण जो है क्षत्रियों से ऊपर होता है, बुरा मान सकते। पर द्रोणाचार्य के पास गए तो भीष्म जी बुरा नहीं मानेंगे, तो उनके पास जाके बताता है कि हमारी शक्ति जो है अपरिमेय है, मतलब इमेजरेबल है, और इनकी शक्ति जो है। और द्रोणाचार्य को क्या कहता है कि आपके शिष्य भीम द्वारा ये अभिरक्षित है। और द्रोणाचार्य को इंसाइट कर रहा है कि आपका शिष्य है और आपके सामने खड़ा लड़ने के लिए, आप ही ने इसको शिक्षा दी थी, आप ही ने इसको सिखाया, और अभी आपके सामने खड़ा है, आप तो इसको हरा सकते हो। आपका डिसाइपल है, कहां जीतेगा आपसे? तो द्रोणाचार्य को और पंप अप कर रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि सारे जो योद्धा हैं कृपया भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि वो सेनापति वो है। तो द्रोणाचार्य को पंप अप कर रहा है कि आप सेनापति नहीं हो पर आप इंपॉर्टेंट हो, भीष्म की रक्षा करनी है। क्योंकि दुर्योधन की सेना के जितने भी योद्धा थे एक्सेप्ट करण, दुशासन, शकुनी, बाकी सब की जो लॉयल्टी थी वो डिवाइडेड थी। हर कोई आना नहीं चाहता था इधर, पर आना पड़ रहा था, और वो चाहता था दुर्योधन किसी तरह ये मेरे ही पक्ष में रहे, क्योंकि उसको पता था ये युद्ध के नियम है कि जब शंख बज जाएगा, युद्ध की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद दोनों पक्षों के योद्धा एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, अलाउड है, ये धर्म युद्ध है। और उसको ये डर था कि ये लोग बाल उधर ना चले जाए। उसको पता है कि मैं गलत साइड में, वो इस तरह सबको पंप अप कर रहा है, अपनी साइड में रख रहा है। ये सेनापति का एक ही काम भी है। तो दुर्योधन जैसा आप सबने बी आर चोपड़ा का महाभारत सीरियल तो देखा होगा, तो उसमें जैसा हठी और वैसा बताया गया वैसा था नहीं। बिग बिग पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा राजनीतिक ये कोटिंग डिप्लोमेट था, ऐसे नहीं था। तो anyway, महाभारत की पूरी स्टोरी में नहीं जाएंगे। तो इसके बाद श्लोक आता है कि तब कुरु, 12वां श्लोक जो है, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन अभी भी थोड़ा सा डिप्रेस था, पर भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और दुर्योधन को थोड़ा हर्ष हुआ कि अब बात बनी, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, अब युद्ध शुरू होगा और ये मेरे पक्ष में युद्ध जो है अच्छे से करेंगे। उसके बाद इस श्लोक में जैसे बताया, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वे संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, बहुत जोर से आवाज हो रही थी, शोर मच रहा था। तो जैसे बताया गया है कि 18 अक्षोहिणी सेना थी, 11 जो है कौरवों की साइड, 7 जो है पांडवों की साइड। और अक्षोहिणी का डिस्क्रिप्शन प्रभा जी ने आगे दिया है कि एक अक्षोहिणी में कौन कौन होते हैं। तो बहुत सारे सैनिक थे और सबसे बड़ा युद्ध था ये हिस्ट्री का महाभारत। इसमें सेनाएं जो है पूरे विश्व से आई थी, हर पूरे विश्व के जितने भी राजा थे उन्होंने अपनी अपनी सेना भेजी थी इस युद्ध में। तो इतने लोग जब एक साथ शंख, नगाड़े, बिगुल, सिंह, तुरही बजा रहे हैं, तो कितना कितना आवाज होगी, कितनी आवाज होगी, बहुत जबरदस्त आवाज होगी। तो फिर आगे क्या लिखा भगवद गीता में, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तथा श्वेतैर्हयैर् युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माध्वा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा, श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषम पक्ष जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। अतः जैसा कि विष्णु ये भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वे अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा वहीं विजय जो है निश्चित है। तो यहाँ जो गीता में लिखा है कि दिव्य शंखो, भीष्मदेव के शंख के बारे में ये नहीं बताया गया कि दिव्य शंख था, अर्जुन और कृष्ण के बारे में बताया गया कि इनका शंख जो है दिव्य था, ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक, इस लोक का नहीं था। तो इससे भी ये सूचित होता है कि विजय जो है पांडवों की ही होगी। और इस श्लोक में शब्द आया है, पहले शब्द आया है माधवा, कृष्ण का नाम जो है माधव बताया गया इस श्लोक में। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। तो कृष्ण का नाम जो है माधव बताया गया है। माधव का मतलब पता किसी को? वो मधुसूदन, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, हस्बैंड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, माधव। तो माधव शब्द क्यों बोला? हर श्लोक में एक एक शब्द जो है बड़ा सोच समझ के बोला गया, रखा गया। तो माधव ही क्यों बोला? उनका नाम कृष्ण या गोविंद या गोपाल क्यों नहीं बोला? माधव ही क्यों बोला? क्योंकि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई थी? जब समुद्र का मंथन हुआ था, देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, तो पहले उसमें से विष निकला, फिर बहुत सारी चीज़ें निकली, रावण, चंद्रमा, बहुत सारी चीज़ें निकली, और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सब लोगों ने सोचा कि ये हमारी पत्नी बने। तो पर उस समय प्रथा थी स्वयंवर की, तो दोनों देवता और दानव जो है सब लाइन बना के बैठ गए कि लक्ष्मी जी जिसको पसंद करेंगी, जिसको गले में वरमाला डालना चाहें डाल। तो लक्ष्मी जी चलती जा रही हैं, देख रही हैं दोनों साइड में, ये दानव है, ये देवता है, देवताओं में भी ये कमियां हैं, सारे देवता बैठे थे, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो फिर जब सामने पहुंची, सामने नारायण दिखे, तो नारायण को देखा तो उन्होंने कहा इनमें कोई कमी नहीं है, तो नारायण के गले में उन्होंने वरमाला डाल दिया। क्यों? क्योंकि नारायण जो है उनमें छह ऐश्वर्य पूरी तरह से मौजूद हैं, वो है नारायण। तो लक्ष्मी जी जहां है, नारायण जहां है, वहां विजय श्री अवश्य ही होगी। इसलिए माधव बताया गया कृष्ण का नाम। वैसे तो कृष्ण के पास एक नहीं हजारों लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि हजारों हजार लक्ष्मियां जिनकी सेवा में तत्पर रहती हैं, ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूँ, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जहां लक्ष्मी है, जहां नारायण है, जहां विष्णु है, वहीं जो है विजयश्री रहेगी। यही भगवद्गीता का जो अंतिम श्लोक है उसमें भी यही बताया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विज्योर भूतिर ध्रुवाधीतिर मतिर मम, कि वहीं श्री और वहीं विजय होगी जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है। तो जहां लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी है तो नारायण भी हैं, तो मतलब कृष्ण है, तो वहीं विजय होगी। तो माधव मतलब संजय जो है शुरू से बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जहां माधव है मतलब लक्ष्मी जी वहीं है, वहीं विजय होनी है। आप जो है जीत नहीं सकते, आपके पुत्र जो है जीत नहीं सकते। तो ये चीज जो है हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हम लोग जो है अभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद दिवाली का उत्सव आएगा, राइट? तो दिवाली पे हम घर में किसकी पूजा करते हैं? सिर्फ लक्ष्मी, लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी। तो लक्ष्मी जी की खासकर पूजा होती है, नहीं? सब चाहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर आए, खूब धन धान्य मिले, जुआ भी खेला जाता है उसे ये सोच के जुआ खेलेंगे तो लक्ष्मी आएगी। हालांकि हारते ही हैं ज्यादा लोग, पता नहीं कैसे जुआ खेलने से लक्ष्मी आती है, समझ नहीं आया कभी। वैसे आप लोगों ने लास वेगास का नाम सुना होगा, अमेरिका में बहुत बड़ी, बहुत बड़ा शहर है जहां से जुआ ही जुआ होता है। वहां लाखों लोग जाते हैं खेलने के लिए, हो सकता है एक या दो लोग जो है जीत के आए, बाकी लोग तो पैसे लुटा के ही आते हैं, कोई जीतता नहीं है। तो जुआ खेलने से कोई जीता है? जो जिन्होंने जुए की मशीन बनाई है, जिनके होटल है, हाँ वो लोग तो पैसा कमाते हैं, पर तो जो खेलने जाते हैं वो लोग नहीं जीतते। तो लक्ष्मी आती नहीं है, चली जाती है। और लक्ष्मी जो है नारायण की पत्नी है। अगर आप किसी की पत्नी को अपने घर आमंत्रित करें तो आएंगी? पति को ना बोला, पत्नी को सिर्फ बोला। किटी पार्टी खेलना तो बात अलग है, किटी पार्टी की बात नहीं कर रहे। वैसे आप बुलाएं घर पे, निमंत्रण दे, आए हमारे घर में प्रसाद लेने के लिए, खाना खाने के लिए। पत्नी आएंगी? नहीं आएंगी। अगर आप पति को बुलाएं तो साथ में पत्नी अवश्य आएंगी। आजकल तो खैर कलयुग है तो ये एग्जाम्पल सभी समझ में नहीं आता पर दूसरे युग के वैदिक प्रथा के हिसाब से सोचे तो आजकल तो पति पत्नी में इतना झगड़ा रहता है कि दोनों साथ साथ जा ही नहीं सकते वो तो प्रेफर करेंगे अलग अलग जाए, वो बात अलग है। पर प्रथा जो वैदिक प्रथा वो यही है कि पति को बुलाएंगे तो पत्नी अपने आप साथ में आएंगे। रावण से भी क्या गलती हुई थी? रावण जो है सीता को अपने साथ ले गया था, लक्ष्मी का भोग करना चाहता था, राम की सेवा नहीं करना चाहता था। राम को बुलाता, राम की सेवा करता, सीता अपने आप साथ आती। लक्ष्मी हमारे भोगने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। हमसे गलती यही हो जाती है, हमारी जो अंदर आश्रित प्रवृत्ति है वो यही कहती है लक्ष्मी आनी चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति तो खूब आनी चाहिए, पर नारायण की सेवा नहीं करना चाहते, राम की सेवा नहीं करना चाहते, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। जबकि ये बात नहीं जानते हैं कि कृष्ण की सेवा करेंगे, नारायण जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे, लक्ष्मी अपने आप साथ आएंगी, आएंगी, रह ही नहीं सकती पति के बिना। यही तत्व है, ये तथ्य है, ये जानना चाहिए कि किस तरह लक्ष्मी को बुलाना है। तो जहां कृष्ण होंगे, नारायण होंगे, जगन्नाथ जी होंगे, भगवान होंगे, वहां लक्ष्मी जी अपने आप आएंगे। और जहां कृष्ण होंगे वहां असली लक्ष्मी आएगी। रावण जो है जब सीता का हरण करके लेके गया तो उसको असली सीता नहीं मिली थी, अग्निदेव ने माया सीता दे दी थी। जब लक्ष्मण रेखा पार की तो अग्निदेव प्रकट हुए, असली सीता उन्होंने रख ली और रावण को माया सीता दे दी। अब जाओ माया सीता को लेके खुश रहो, और माया सीता की वजह से भी मर गया राम ने माया सीता की वजह से भी उसको मार दिया। तो ये होता है हमारे साथ। अगर हम चाहें कि सिर्फ लक्ष्मी आए हमारे घर में तो माया लक्ष्मी आती है, असली लक्ष्मी भी नहीं आती। असली लक्ष्मी चंचला नहीं है, माया लक्ष्मी चंचला है। असली लक्ष्मी अपने पति के साथ हमेशा रहेगी, माया जो लक्ष्मी है वो नहीं रहती। ये जानना चाहिए कि किस तरह हमें लक्ष्मी को बुलाना है। तो जहां लक्ष्मी होगी वहीं श्री विजय सब कुछ होगा। तो ये संजय जो है या वेदव्यास जी श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, माधव, माधव मतलब जहां भगवान है, लक्ष्मी के पति हैं, वहीं विजय श्री होने वाली है। और फिर बताया गया है, माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। पांडवश में अर्जुन के बारे में बताया गया, सिर्फ पांडव, पांचों पांडव नहीं, सिर्फ अर्जुन के बारे में यह बताया गया कि दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सिर्फ इन्हीं दोनों के शंखों के बारे में बताया गया कि दिव्य शंख थे। अगर हम भी जिस तरह अर्जुन कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण की सेवा में जुड़े हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के सखा हैं, तो अर्जुन में भी वही क्वालिटीज आ गई जो कृष्ण में है। ये है फायदा भक्ति करने का। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान में जो गुण है, भगवान में जो क्वालिटीज है, वो हमें भी आती है। इसलिए दोनों के शंखों को बताया गया कि दिव्य शंख थे। तो अर्जुन में भी वही क्वालिटीज हैं जो भगवान में है। क्वांटिटी अलग होगी, मात्रा कम हो सकती है, वो क्वालिटीज वही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। और भगवान देखो अपने भक्त के लिए वो क्या पोजीशन दे देते हैं। इसलिए हमारा जो दिल्ली मंदिर है उसके डीडी का नाम है पार्थ सारथी, अर्जुन के जो सारथी बन गए, अर्जुन का रथ हांकने वाले व्यक्ति, अर्जुन के ड्राइवर। और सारथी का काम सिर्फ ये नहीं कि ड्राइविंग करना है, सारथी के और भी बड़े काम होते थे। जब घोड़े जो थक जाते थे उनकी मालिश भी करना है, उनको घास भी खिलानी है, उनको पानी भी पिलाना है, ये सारथी का काम होता था। और भगवान ने अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए ये सारी जिम्मेदारियां की। ये है कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो श्रीरंगम जब पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जो है गीता पढ़ रहा है और वो रो रहा है और उसके आसपास बहुत सारे ब्राह्मण खड़े हैं, वो हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा उस ब्राह्मण से कि भाई तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने देखा महाप्रभु सीरियस हैं और गंभीरता से प्रश्न पूछ रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे। तो उन्होंने कहा महाप्रभु से कि महाप्रभु मैं जो है ये गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर चूंकि मेरे को संस्कृत नहीं आती अच्छे से, इसलिए मेरे से उच्चारण में गलती होती है, तो इसलिए ये बाकी लोग जो है मेरा मजाक उड़ा रहे, हंस रहे हैं। महाप्रभु ने पूछा तो तुम गीता पढ़ के रहे हो? कि मेरे गुरु का आदेश है, उन्होंने कहा डेली जो है गीता पढ़नी है, तो इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। महाप्रभु ने कहा ठीक है, बाकी चीजें समझ गए, पर तुम रो क्यों रहे? बोले कि जब भी मैं गीता उठाता हूं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरे को समझ में तो नहीं आता, तो मेरे को एक ही चीज सामने आ जाती है कि किस तरह कृष्ण जो है अपने ही भक्त के प्रेम पूर्वक उसके सारथी बने, उसका रथ कहां करें। तो ये सीन सामने देख के मेरे को रोना आता है कि भगवान अपने भक्तों को किस तरह प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु ने फिर उसको कहा कि तुमने असली गीता को समझा है, आज से तुम्हें गीताचार्य की पदवी देता हूं। तो असली गीता को उसी ने समझा था। जो गीता पढ़ के भगवान का भक्त नहीं बन पाया, भगवान ने भक्ति, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, वो गीता को नहीं पढ़ सका, गीता को नहीं समझ सकता। तो गीता को पढ़ने का एक ही मतलब है किस तरह भगवान में भक्ति हमारी जागृत हो। गीता जो है सिर्फ बैठ के और टेबल पर रख के डिस्कशन करने की चीज नहीं है। प्रपात से पहले करीब 700 लोगों ने गीता पर टिप्पणी लिखी है अपनी अपनी, तो किसी ने भी भक्ति के माध्यम से इसको नहीं समझाया। कोई भी वो व्यक्ति जिन्होंने टिप्पणी लिखी और उसको पढ़ने वाले लोग भी, कोई भी भगवान का भक्त नहीं बना। श्री प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के ही आज पूरे विश्व में लोग जो भगवान के भक्त बन रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं। ये है भगवद्गीता का महत्व, ये है भगवद्गीता का गौरव। हर एक श्लोक में भक्ति के बारे में बताया गया है गीता के, हर श्लोक में। देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए गीता में ही बताया गया है कि किस तरह इस दिव्य संदेश को हम समझ सकते हैं। गुरु की शरण में जाके, गुरु का आश्रय लेके, गुरु की सेवा करके, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करके हम गीता को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। और गीता से समझने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, उसने कहा कि गीता का ये जो वार्ता था, इस वार्तालाप था अर्जुन और कृष्ण में, ये करीब 48 मिनट चला था, क्योंकि युद्ध तो शुरू होने वाला है, शंख बज गए हैं, उसके बाद ये वार्तालाप शुरू होता है, टाइम इतना ज़्यादा थोड़ी था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भी 48 मिनट में पूरी गीता जो है बोल सकता हूँ, सारे श्लोक जो है बोल सकता हूँ। तो प्रभा जी ने उससे कहा, तुम 48 मिनट गीता बोल तो सकते हो, पर क्या 48 मिनट गीता को जी के दिखा सकते हो? भगवद गीता सिर्फ तोते की तरह बोलने के लिए नहीं है, इसको जीवन में उतारना चाहिए। तो जैसे इसमें बताया ना कि माधवा पांडवश्चर्य दिव्य शंखो प्रदत्मतो, तो अगर हम भी भगवान के भक्ति करें, भगवान के भक्त बने, भगवान की सेवा में जुड़े, हम में भी भगवान की वही क्वालिटीज आएंगी जो दिव्य गुण है भगवान में, हम में भी आएंगे। हम में भी वही करुणा का भाव दूसरों के प्रति आएगा। भगवान ने गीता क्यों बोली है? अर्जुन के लिए नहीं बोली, अर्जुन तो सब समझ लेते, हमारे लिए बोली कि हम किस तरह ये जो व्यर्थ के ड्यूटी जिसको धर्म बोलते हैं उसमें जो लगे पड़े हैं वो छोड़ के भगवान की शरण में जाएं। तो हमें भी वो क्वालिटीज आएंगी, हम भी लोगों में प्रचार कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब हम भी भगवान की भक्ति करेंगे और थोड़े शुद्ध होंगे, तभी प्रचार कर पाएंगे, तभी लोगों को गीता का संदेश दे पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, गीता पढ़ने के बाद, गीता समझ, गीता अपने जीवन में उतारने के बाद बहुत जरूरी है कि गीता का संदेश दूसरों को दिया जाए। तो यही भगवान भी चाहते हैं। 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो ये मेरा संदेश दूसरों को देता है वो मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे प्रिय आज तक मुझे और ना कोई है ना कोई होगा। तो ये संदेश भी हमें दूसरों को देना है, पर ये कब संभव है? जब हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। तो अब 15वां श्लोक पढ़ते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया कौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। इसमें भी कृष्ण का नाम कृष्ण ही बोला, ऋषिकेश बोला, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्य के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। एक गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी तरह इनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम मृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी तरह वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिम्बासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था क्योंकि ना तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो कृष्ण का नाम जो है एक टोयोटा इटियोस गाड़ी खड़ी है HR26BQ1002, गाड़ी जरा हटा लीजिए। तो कृष्ण का नाम जो है इस श्लोक में ऋषिकेश बताया गया। ऋषिकेश मतलब ऋषिका, ऋषिका मतलब इंद्रियां, ईश मतलब इंद्रियों स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश मतलब कृष्ण। हम जो है इन इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाते हैं, इंद्रियों से अपने आप को भोगना चाहते हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियां हमें घुमाती रहती हैं। पांच इंद्रियां हैं और मन को भी छठी इंद्रिय बताया गया। इन इंद्रियों के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, सारी जिंदगी इधर से उधर भटकते रहते हैं इन इंद्रियों की सेवा करने के लिए। पर अगर इन इंद्रियों को ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इन इंद्रियों को जब ऋषिकेश इन इंद्रियों के असली स्वामी कृष्ण की सेवा में जब लगाते हैं, यही भक्ति है। और भक्ति कुछ नहीं। कई बार लोगों के पास जब उनको कहते हैं ना कि आप आइए मंदिर आइए जप करिए सेवा में लगिए, तो कहते हैं हम मन से सब कुछ कर लेते हैं। पहली बार भाई आप खाना क्या मन से खाते हैं? नौकरी क्या मन से करते हैं? नौकरी कई जॉब पे गए, बॉस ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, बॉस को जाके बोल दीजिए अरे मैंने तो मन से प्रोजेक्ट कर दिया। बॉस कहेगा ठीक है मैंने भी मन से पेमेंट कर दी। पत्नी कहे मैंने मन से खाना बना दिया आप मन से खा लो, कभी होता? तो भगवान की जब सेवा की बात आती है, नाम लेने की बात आती है, हम भी मन से कर लेते हैं। ये ना करने के बहाने हैं और कुछ नहीं। अपनी सारी इंद्रियों को, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तभी तो भक्ति है, वही तो सेवा है। सिर्फ मन से थोड़ी, मन को भी लगाना चाहिए। तो मन में काम नहीं करना, मन से काम करना, मन से सेवा करनी है। या फिर लोगों से कहो कि भगवान जगन्नाथ जी आए विराजमान है, उनकी सेवा करो, दर्शन ही कर लो चल के। ओ भगवान तो हम सबके हृदय में है, हम तो बस ठीक है यही हो गया, बहुत हो गया। परिवार में है तो पत्नी बच्चे भी हमारे हृदय में होते हैं, वो उनकी सेवा तो इन्हीं कह के कर देते, वो तो हमारे हृदय में होगी सेवा, उनकी तो प्रत्यक्ष रूप से करेंगे ना। उनके लिए कोई सामान भी लेके आना है, नौकरी भी करनी है, उनको घुमाने भी ले जाना है, उनको कुछ खिलाना भी है, वो वाकई वास्तविक रूप में करेंगे, तब नहीं कहते वो दिल में है हमारे होगी सेवा, तब कोई नहीं कहेगा। पर जब भगवान के लिए सारी बात आती है, वो हमारे दिल में है, हमारे मन में है, बस वही सेवा ठीक है, अनेक बहाने मिलते हैं, गलत है। इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब हमारी सारी इंद्रियों से जिनकी सेवा करनी चाहिए, असली इंद्रियों के स्वामी वही है, उन्हीं ने हमें सारी इंद्रियां दी हैं। हाथ को चलने की शक्ति भी उन्होंने दी है, हाथ भी उन्होंने दी है। पैरों को चलाने की शक्ति भी वही देते हैं, पैर भी उन्होंने दिए। नाक आंख कान सारी इंद्रियां सब कुछ भगवान ने दी है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमारे माता पिता ने यह नहीं बनाया है, बनाया भगवान ने है। माता पिता तो सिर्फ निमित्त मात्र बनते हैं बीच में। तो ये जब जिसने हमें दिया है उसी की सेवा में लगाना ठीक है, यही भक्ति है। नहीं तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार क्या कहा गया, हम सब चोर हैं। अगर हम जो भी चीजें भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के नहीं खाते, तो हम चोर माने जाते हैं। और चोर की एक ही सजा होती है, जय जगन्नाथ बोलते सुब्रह्मण्य की जय, गौरताई की जय। इसलिए भगवान का भी एक नाम है माखन चोर। तुम तो भगवान माखन चोर नहीं है, सब तो उन्हीं का बनाया हुआ है, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। अपनी ही चीज में से कोई चीज ले जाए तो चोरी थोड़ी कहलाती है। वो तो प्रेमवश ये स्वीकार कर लेते हैं माखन चोर, मैंने किसी दूसरे का माखन चुराया है, तो सब उन्हीं का। गाय भी उन्हीं की दी हुई है, घास भी उन्हीं की है, गाय से निकलने वाला दूध भी उन्हीं का, सब कुछ तो उनका है, हमारा है क्या? असली चोर तो हम लोग हैं। वो उनको माखन चोर कहते हैं तो माखन चोर के नाम से भी वो खुश होते हैं और उससे हमारी शुद्धि होती है। वो हम लोगों को कोई चोर कहे तो हम भी दुखी रहेंगे, वो भी कष्ट ही पाएगा, उसकी शुद्धि नहीं होने वाली। तो ये भगवान में और हम में फर्क है। तो भगवान ऋषिकेश हैं, ऋषिकेश। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि हालांकि तो सब जीवों की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, कोई शुद्ध भक्ति इंद्रियों का प्रत्यक्षता निर्देशन करते हैं। शुद्ध भक्त मतलब अर्जुन। तो जब अर्जुन भगवान के साथ हैं, भगवान ऋषिकेश हैं, तो अर्जुन ने इसलिए भी उनको सारथी बनाया था कि आप मेरे को मेरे रथ को कहीं इधर उधर नहीं भटकने देंगे, आप मेरी भी इंद्रियों का निर्देशन करेंगे और रथ का भी, घोड़ों का भी निर्देशन करेंगे, तो इसलिए आप सारथी बने। तो हमें भी अपने जीवन में कृष्ण को ही सारथी बनाना चाहिए। इस जो ये जो शरीर है हमारा, इसका भी कंपैरिजन जो है, तुलना जो है, एक रथ से की गई है। जो रथ के घोड़े होते हैं इस शरीर की इंद्रियों के समान माने गए हैं। मन जो है, लगाम जो होती है मन के समान, मन जो है लगाम के समान है। बुद्धि जो है सारथी है और आत्मा जो है रथी है, जो सवार है, सवारी है। तो हमें भी ये चाहिए कि सारथी जो है, हम अपनी बुद्धि को इतना कृष्ण की सेवा में लगाएं कि सारथी जो है कृष्ण बन जाए हमारे रथ के, इस शरीर के रथ के भी, और इस शरीर को भी अपनी ही सेवा में लगा के रखें। वही भक्ति है, वही जीवन का उद्देश्य है, वही जीवन का लक्ष्य है। हम अपनी बुद्धि के चलते और उस बुद्धि या उस मन के, जो बुद्धि अगर कमजोर है तो मन के द्वारा जो घोड़े इधर उधर बिदक जाते हैं, इंद्रियां जो इधर उधर चूजे जाती हैं, उनकी वजह से करोड़ों करोड़ जन्मों से हम अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। इंद्रियां कुछ चाहती हैं, आंख चाहती है आज ये पिक्चर देखूं, नाक चाहता है ये सुनूं, जिह्वा चाहती है ये खाऊं, कान चाहते ये गाने सुनूं। तो इन इंद्रियों के वजह से जो मन भी नियंत्रण में नहीं है, बुद्धि के, बुद्धि इतनी खराब है, मन नियंत्रण में नहीं है, तो घोड़े जो है इधर क्या इधर भागते हैं या उधर भागते हैं। तो इंद्रियां जो है हमें भगाती रहती हैं, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। पर अगर कृष्ण हमारे रथ के, हमारे शरीर रूपी रथ के सारथी बन जाए, उनसे अगर प्रार्थना करें, उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, तब हमारी जो इंद्रियां जो है इधर उधर नहीं भागेंगी, और तब जो है हमारा ये शरीर रूपी रथ जो है सही दिशा में जाएगा, इसका निर्देशन ठीक होगा। तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, उसके लिए भक्तों के संग में आना पड़ेगा, उसके लिए भगवद गीता सुननी पड़ेगी, भागवतम का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए माला जप करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। घर बैठे ये काम नहीं होते, बस ये क्या इन दिल में से नहीं चल जाता, वो भगवान तो हम सबके हृदय में है, इससे काम नहीं चलने वाला। वो जी अंदर से हो गई सेवा, भी हम मन से नाम ले लेते हैं, हो जाता सब कुछ, हो जाता नहीं। इंद्रियों को सेवा में लगाना पड़ेगा, तब हल्के 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 मन जो है किसी तरह नियंत्रण में आएगा, मन भी फिर भगवान की सेवा में लगेगा। लोग कहते हैं ना शुरू में कि हमारा तो मन नहीं लगता, ना जप में मन लगता है, ना पढ़ते हैं तब कुछ समझ में आता है, ना सेवा में लगता है, दर्शन करते हैं तब भी मन इधर उधर भटकता रहता है, तो ऐसे चीज का क्या फायदा, ऐसा जप करने का क्या फायदा? फायदा है, क्योंकि हल्के 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 मन जो है कंट्रोल में आएगा, आ रहा है, तो करने से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कुछ भी कर लीजिए, करते रहेंगे भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो भगवान ऋषिकेश है, तब हमारे मन में बैठेंगे और ऋषि अपनी हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। और इस श्लोक में एक और शब्द आया है, अर्जुन का नाम बताया गया धनंजय। अर्जुन को सिर्फ पार्थ या अर्जुन नहीं बोला, धनंजय बोला है, मतलब जिन्होंने बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन प्राप्त करने के सहायता की थी। तो धनंजय मतलब जिन्होंने धन को जीत लिया है, धन को जैसे शब्दार्थ में बताया गया है धन को जीतने वाला। तो धन को जीतना किसके लिए? यज्ञ के लिए, अपने लिए नहीं जीता उन्होंने। बड़ा भाई युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करना चाहते थे, यज्ञ किस लिए होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। उस यज्ञ के लिए वो उन्होंने धन को जीता था। चारों भाई जो है अलग अलग दिशाओं में गए थे और राजस्व यज्ञ के समय धन लेके आए थे, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा के लिए। अगर भगवान की सेवा के लिए हम कुछ भी धन कमाना पड़े, चाहे भीख मांग के लाना पड़े, किसी भी तरह लाना पड़े, लाना चाहिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो हमारा क्या, अगर भगवान आएंगे लक्ष्मी अपने आप साथ आ जाएगी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की सेवा के लिए हमें चाहिए धन को लेके आए, अर्जुन भी लेके आए, ये है भक्ति। एक बार चूंकि 8 बज रहे हैं तो एक कथा आती है, कथा क्या, एक इंसिडेंट है प्रभुपाद जी के साथ। प्रभुपाद जी बॉम्बे टेंपल, जुहू टेंपल बनना था, तो उस समय पंडाल प्रोग्राम किया गया था, तो उसमें लेक्चर दे रहे थे, खूब बड़ा पंडाल प्रोग्राम था। और पंडाल में से जो प्रवचन दे रहे थे उसमें यही बता रहे थे कि किस तरह जो है हमें और लक्ष्मी चाहिए मंदिर बनाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो एक व्यक्ति जो है उस सभा में खड़ा हुआ और शिला प्रभा से बोला कि स्वामी जी मैं तो यहाँ आया था सुनने की कुछ कृष्ण कथा करेंगे, कुछ लीला बताएंगे, आपको पूरा समय जो है पैसों की बात कर रहे हैं, ये क्या कृष्ण कथा है? प्रभा जी ने उसे बुलाया, क्या स्टेज पे रहा और कहा कि मैं प्रवचन फिर से कंटिन्यू करूँगा, तुम जो है पीठ पे मेरे कान लगा के बैठ जाओ। और प्रभा जी ने प्रवचन फिर से कंटिन्यू किया और फिर से पूरे पैसे की बात कर रहे। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को बुलाया, पीछे बैठे था कान लगा के, उसे पूछा क्या सुना? बोला मैंने पूरे समय जो है हरे कृष्ण महामंत्री सुना और कुछ नहीं सुनाई दिया मेरे। तो ये है शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद अगर पैसे की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सेवा लगाने, सेवा के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र से अलग नहीं है। हाँ हमसे गड़बड़ हो सकती है, हम भटक सकते हैं। भटक सकते हैं क्या? भटके हुए हैं। तो इसलिए हमें नियम बताए गए हैं, 4 नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण माला मंत्र का जप करना है, 16 माला का जप करना है और फिर सेवा भी करनी है। सेवा अलग अलग हो सकती है, किसी की सेवा सफाई की हो सकती है, किसी की सेवा पुजारी की हो सकती है, प्रसाद बनाने भोग बनाने की हो सकती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हो सकती है, धन एकत्रित करने की हो सकती है, अलग अलग सेवाएं हैं। पर अगर हम उन सेवाओं को इस ये मानकर करें, ये सोचकर करें, ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए है, वो सारी सेवा जो है हमें शुद्ध करेंगे, कोई भी सेवा वो हमें शुद्ध करेगी, पक्की बात। और जब ये शुद्ध करेगी तब जो है कृष्ण हमारे हृदय में बैठेंगे असली ऋषिकेश बनकर, तब हमारी इंद्रियों का निर्देशन करेंगे और तब जो है हमें सही दिशा में ले जाएंगे, हमारे शरीर रूपी रथ को भी अपनी सेवा में लगाएंगे और इनके चलते फिर हम चलेंगे तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। यही भगवद गीता का असली संदेश। हरे कृष्ण। यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु। एक तो पांडवों ने सब अपने शंख बजाए, उस तरफ से कौरवों की सेना में, क्योंकि अलग अलग लोग थे ना उस सेना में, तो अपने अपने हिसाब से उनके पास जो जो चीजें थी वो बजा रहे थे। और वैसे अगले श्लोक में आता है कि बाकी तीन पांडवों ने जो शंख बजाए उन सबके नाम बताए गए, अनंत घोष, मणिपुष्पक और एक और है। तो इसका अर्थ ये था कि जो पांच लोगों के शंख के नाम बताए गए हैं और भगवान कृष्ण, तो अंत में यही पांच जो हैं बचेंगे। बाकी सब सबका हरि बोल होने वाला है। ठीक, और कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु। और अर्जुन के लिए बताया कि भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो बताते हैं पांडव नाम यथा अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, क्योंकि अर्जुन इन पांचों पांडवों में श्रेष्ठ भक्त है, भक्ति में वो सबसे आगे है इन पांचों पांडवों में। हालांकि गुणों में युधिष्ठिर महाराज ज्यादा अच्छे हैं, पर भक्ति में अर्जुन ज्यादा आगे। तो भगवान तो अपने आप को जो श्रेष्ठ भक्त है उसी से रिलेट करेंगे। हालांकि पांचों पांडव और द्रौपदी भी उनको बहुत प्रिय है, पर अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ जी प्रभु। निर्विशेषवादी का मतलब क्या है? निर्विशेषवादी वो मतलब जो भगवान के साकार रूप को नहीं समझते, मानते भी नहीं है। तो कहते हैं भगवान निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। इसमें भगवान शंख बजा रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो कोई व्यक्ति तो चलाएगा, कोई ब्रह्म ज्योति आके थोड़ी असर करेगी। भगवान गीता में भी आके कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझ में लगाओ, मुझ में, कोई व्यक्ति ही तो कहेगा मुझ में लगाओ, ज्योति थोड़ी कहेगी। तो भगवान, भगवान का आकार भी है, हालांकि ब्रह्म ज्योति उन्हीं का, उन्हीं के शरीर की ज्योति है, पर ब्रह्म ज्योति जो है अल्टीमेट नहीं है। तो अल्टीमेट जो है भगवान है आकार वाले, सब विशेष। और जो निर्विशेष है वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही समझ पाते हैं, उसके आगे समझ नहीं सकते। जैसे पंजाब में तो कहा जाता है ना कि बाकी सबका आकार पर एक ही निराकार। पंजाब में बहुत जगह ट्रकों के पीछे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब बाकी सबका आकार है पर तुम इतने बेकार हो कि तुम निराकार हो, तुम्हारा कोई आकार नहीं। हालांकि गुरु नानक देव ने भी मेरा ख्याल इसमें लिखा है गुरु ग्रंथ साहब ने कि निराकार है। तो एक वजह से हम कहते हैं निराकार है कि कुछ इस तरह के शब्द लिखे हैं निर्गुण ने, पर उस निराकार का मतलब है उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, उनका सारा आकार जो है ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है। तो भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, इसलिए कई बार कहते हैं उनकी कोई इंद्रियां नहीं है। हाँ, भौतिक इंद्रियां नहीं है, स्पिरिचुअल है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। तो इसलिए ये समझने के लिए हमें किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान अर्जित करना होता है शास्त्र पढ़ के, वो जो है ज्यादातर निराकार की तरफ भागते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कई चीजें ऐसी बताई गई जो हमारी समझ से नहीं आती। जैसे ईश्वर परिषद ने लिखा है कि भगवान जो है सबसे दूर है और सबसे पास है, एक जगह भी है और हर जगह भी है, चलते भी नहीं और सबसे तेज दौड़ते हैं। तो अपनी बुद्धि से सोचेंगे अरे ऐसा कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो निराकार होंगे तभी तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, भगवान में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकते। जैसे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है, जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो भगवान कृष्ण यहां साक्षात मौजूद है, पर हम में और हमारे नाम में फर्क है। अगर आपको कोई नाम घर पे ले रहा है तो आप वहां पे नहीं हो, आप यहां पे बैठे हो। तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं, पर यह चीज हम नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते तो अपनी बुद्धि से कह सकते हैं अरे जो फर्क नहीं है, मतलब भगवान वहां भी है यहां भी है, तो निराकार ही होंगे ना। निराकार है मैं यही हो सकता हूँ, घर पे नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ भी है, घर पे भी है, चोर के घर में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, हर जगह है, तो निराकार होंगे। पर हम में और भगवान में फर्क है। तो निर्विशेषवादी जो है वे कहते हैं उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कुछ नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा जो गलत चीज है वो यही है। मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी या निर्विशेषवादी जो है ये सबसे बड़े अपराधी हैं। कोई अभक्त है वो इतना बड़ा अपराधी नहीं है जितने बड़े ये मायावादी अपराधी। इसलिए भगवान को ये मायावादी पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। हम भक्त ना बने वो ठीक है, वो फिर भी चलेगा। हम जब कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं है, वो सबसे खराब है। तो सबसे अच्छा तो ये हम भक्त बने, भगवान की सेवा करें, भगवान के धाम जाएं। उससे आगे भी नहीं जा सकते, वहां से भी वापस आना पड़ता है, वापस गिरना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ब्रह्म ज्योति में भगवान की सेवा से मिलने वाला आनंद नहीं है, इसलिए वो वापस इस भौतिक जगत में गिरते हैं। और फिर जब कभी भक्त का संग मिलेगा, भक्ति करेंगे, फिर भगवान के धाम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे, वहां से फिर से वापस क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो यही विराम देते हैं। अब थोड़ी देर कीर्तन होगा, क्या क्या समय हो रहा है? समय हो गया। चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुणिकाई गौर प्रेमानंदी।